राग द्वेष रखते नहीं, नहीं मान अभिमान, समदर्शी रहते सदा, ऐसो भाई महान। श्रीमद् भागवतम की सातों दिन की कथा प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अपने बड़े भ्राता संत स्वभाव तुल्य स्वर्गीय सेठ कुंवर चंद जी अग्रवाल को मैं कवि नारायण अग्रवाल समर्पित करते हुए उनके सद्गुणों की कोटि कोटि वंदना करता हूँ। ईश्वर करे हर घर में अपने छोटे भाई को माता पिता से अधिक प्रेम देने वाले भाई जन्मे तो संयुक्त परिवार स्वर्ग से भी अधिक सुंदर होगा।
तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। श्रीमद्भागवत की कथा जिस समय हो, जिस दिन हो, जिस लग्न मुहूर्त में हो, वो सबसे शुभ है। कथा के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। सर्वप्रथम सद्गुरु की वंदना, फिर गणपति वंदना, फिर वाग देवी सरस्वती की वंदना, श्री मद्भागवतकार व्यास जी की वंदना, कथावाचक के रूप में व्यासपुत्र सुखदेव जी की वंदना और पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण की वंदना। ये क्रम है मंगलाचरण का।
अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगजानन पद्मार्कम् गजानन महर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे। शुक्लांबर धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। शारदा शारदाम्बुज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकम् सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप या स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानन्दं वासुदेवं नमोस्तुते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलो श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। भक्ता सुनुत खलु मद्वचनं समस्ता स्वर्गे सुधास्ति न तु सा सुलभा भवद्भि कुर्मस्तदत्र भवताम् उपकारकारी भागवत कथां पिवत तत् परमादरेण।
भक्तों, समुद्र मंथन के समय मंथन से 14 रत्नों में एक कल्प वृक्ष भी था। आपने कल्प वृक्ष के विषय में अनेक बात सुनी होंगी कि जो कोई उसकी दिव्य छाया में पहुंचकर मन में कोई इच्छा करता है उसकी इच्छा तत्काल पूरी हो जाती है, किंतु वो वृक्ष तो स्वर्ग में है। और आप तो सब जानते हैं कि पुण्यों की सीढ़ी पर चढ़कर ही स्वर्ग पहुंचा जा सकता है। तब प्रश्न उठता है कि मृत्यु लोक अर्थात इस पृथ्वी पर ताप शाप और पाप से बचने का उपाय कौन सा है। इस संसार को सेमल का फूल मानना चाहिए, देखने में सुंदर किंतु भीतर रूही रूही, कोई रस नहीं। ये तो सांपों से भरा एक कुआं है। सांप भी भयानक विषयों के विष वाले हैं। यदि ये विषय रूपी सांप एक बार काट लें तो मनुष्य उस विष का दीवाना हो जाता है। बुरा परिणाम तो देखता है, परंतु जैसे शराब पीने वाला, ड्रग लेने वाला उसका परिणाम देखता है तब भी उसको छोड़ नहीं सकता। छोड़ना बड़ा कठिन है। विद्वान, गुरु, पिता, माता, बड़े भाई सभी उसे विष का परिणाम दिखाते हैं, उसकी भयानकता से उसे परिचित कराते हैं, किंतु न शराबी शराब छोड़ता है न ड्रगिस्ट ड्रग। लोग सिगरेट और चरस गांजा तक नहीं छोड़ पाते, यहां तक कि पान तमाकू तक नहीं छोड़ पाते, परंतु सदग्रंथ, सदगुरु, बंधु, प्रेमी, हितकामी तो बार बार उसे चेतावनी देते हैं कि विषयों का मोह छोड़ो, इसमें कोई सार नहीं है, केवल यह हमारी बुद्धि को व्याकुल करने वाले हैं। इन सब से बचने का उपाय है शुक गाथा भागवत का अमृत रस पियो।
असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिवत शुक गाथा तुल सुधाम किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी श्रवणगत मुक्ति युक्ति कथने।
सज्जनों, परीक्षित का जीवन इस कथन का साक्षी है कि यदि भवसागर के कष्टों दुखों से छुटकारा पाना है, जीवन को अभय बनाना है, जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना है, जीवन में सुख और अंत में प्रभुपद पाना है, तो श्रीमद्भागवत की शरण ग्रहण करो, अन्य कोई उपाय नहीं है। संसार के सभी महान ग्रंथों के रचने वालों ने अपने ग्रंथों के अंत में ही उसके महत्व की चर्चा की है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के अंत में ही रामचरितमानस के महत्व के विषय में कहा है,
पुण्यम पापहरम सदाशिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोहमलापहम सुविमलम प्रेमाम्बुकूरं शुभम श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणै दैयन्ति नो मानवा।
अर्थात ये रामचरितमानस पूर्ण रूप पापों को नष्ट करने वाला, सदा कल्याण करने वाला, परम पवित्र प्रेम रस से भरा हुआ और बड़ा ही मंगलकारी है। जो मनुष्य भक्ति से युक्त होकर इस ग्रंथ के सरोवर में अवगाहन करता है, वो संसार के भयानक सूर्य की किरणों से बच जाता है। भागवतकार ने भी इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए भागवत महात्म्य की गंभीर चर्चा की है, लेकिन वो ग्रंथ के अंत में ही है।
श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तत्क्षणवन विपठन विचारण परो भक्त्या विमुञ्चेन्नरः।
अर्थात ये भागवत अत्यंत निर्मल निर्दोष पुराण है, भगवान के भक्तों को अत्यंत प्रिय। इसमें भगवान के उन भक्तों के ज्ञान की चर्चा है जो परमहंसों के समान रहे हैं। और विलक्षण बात तो यह है कि नैष्कर्म अर्थात आसक्ति रहित कर्मों से युक्त जिस ज्ञान और वैराग्य की चर्चा की गई है, वो रूखी सूखी नदी नहीं है, अपितु भक्ति और प्रेम रस से सराबोर प्रवाहमान स्निग्ध नदी है। जो कोई इसमें अवगाहन करता है, जो इसको सुनता है, पढ़ता है या इस पर विचार करता है, वो भगवान की भक्ति में विभोर होकर तत्काल मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्तों, किंतु इस महात्म से भक्तों को, आप जैसे लोगों को संतोष नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने फलरहित कर्म करने का इस देश में उपदेश दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसी देश के भक्तों को अधिक फल की आकांक्षा। श्रीमद् भागवत के आगे पद्म पुराण में वर्णित महात्म ऐसा जोड़ दिया गया है कि भागवत का प्रवचनकार बिना इस महात्म की विवेचना किए भागवत में प्रवेश नहीं करता। पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत के महात्म को दो कथाओं के द्वारा बताया गया है। आओ इन कथाओं का श्रवण करें। पहली कथा है भक्ति और नारद की। भक्ति कलयुग में आते आते नित्य युवती होती चली गई और उसके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य नित्य वृद्ध होते चले गए। अपने पुत्रों की दशा देखकर भक्ति बहुत दुखी थी। घूमते हुए नारद जी आए, देखा एक सुंदर स्त्री और दो वृद्ध पुरुषों के बीच बैठे रुदन कर रही है। दोनों पुत्र मृत प्राय थे। नारद ने परिचय पूछा तो भक्ति ने अपना और अपने पुत्रों का परिचय दिया और अत्यंत शोकाकुल होकर नारद से अपने दुख निवारण का उपाय पूछा। नारद भक्ति के दुख से अत्यंत दुखी थे। उसके दुखों के निवारण के उपाय पर जब विचार करने लगे तब उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी।
सत्कर्म स्वरर्षे त्वं समाचर अविद्धास्यन्ति साधु भूषण।
हे नारद, तुम केवल सत्कर्म करो, तुम्हें श्रेष्ठ संतों के दर्शन होंगे, वे ही भक्ति के दुख को दूर करने का उपाय बताएंगे। नारद को भजन के अतिरिक्त किसी अन्य सत्कर्म में कोई रुचि नहीं थी। वो वृक्ष के नीचे बैठ गए, वीणा के तार छेड़ने लगे और भजन गाना प्रारंभ कर दिया।
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
ये नारद के भजन का प्रताप था कि तत्काल ही सनकादि कुमार प्रकट हुए और नारद से बोले, नारद, भक्ति के दुख मिटाने का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत का पारायण। नारद ने प्रेम पूर्वक भक्ति को श्रीमद् भागवत की उत्तम कथा सुनाई, जिसको सुनकर ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए, भक्ति का दुख दूर हो गया। कारण था कि श्रीमद् भागवत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों को ही विशद रूप में गाया गया है। ये भागवत तो त्रिवेणी है, जो भी इसमें स्नान करेगा उसके दुख उसी तरह दूर हो जाएंगे जैसे भक्ति के हुए थे। इसीलिए कहा गया है,
ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते।
जो लोग नित पाप करते हैं, बुरे मार्ग पर चलते हुए दुराचरण करते हैं, क्रोधी हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, लोभी हैं और तरह तरह के इस संसार में दुख भोगते हैं, वे भी भागवत सप्ताह सुनकर परम पवित्र हो जाते हैं। यह है भागवत का महात्म्य।
बोलो देवर्षि नारद की जय।
पद्म पुराण में दूसरी कथा गोकर्ण और धुंधकारी की है। एक ब्राह्मण था, निसंतान। भाग्य से एक तेजस्वी सन्यासी से उसकी भेंट हो गई। निसंतान ब्राह्मण पर दया करके सन्यासी ने एक फल उसे दिया और कहा,
इदं भक्षे पत्न्यां त्वं ततः पुत्रो भविष्यति।
ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे पुत्र अवश्य होगा। ब्राह्मण ने फल अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी थी बड़ी कुतर्की। उसने आशंका में भरकर वो सेव अपनी गाय को खिला दिया। गाय गर्भिणी हो गई। ये देखकर ब्राह्मणी भय से कांप गई, पति से क्या कहेगी। उस पर कृपा करके उसकी बहन ने, जो स्वयं गर्भवती थी, उसे अपना पुत्र देने का वचन दिया। दोनों पुत्र एक समय पर उत्पन्न हुए। गाय के पुत्र का शेष शरीर तो मनुष्य का था, किंतु कान गाय के थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। बहन का बच्चा धुंधियाता था, आंखें मिचमिचाता था, उन्होंने उसका नाम धुंधकारी रख दिया। गोकर्ण बड़ा होकर बड़ा ज्ञानी पंडित हुआ, जबकि धुंधकारी वैश्यागामी हो गया। एक दिन वैश्याओं ने उससे सारा धन छीन लिया और उसे गड्ढे में गाड़ दिया। धुंधकारी प्रेत हो गया। गोकर्ण को जब इसका पता चला तो उन्हें धुंधकारी पर बड़ी दया आई। उन्होंने बड़ी भक्ति से श्रीमद् भागवत कथा वहां सुनाई, जिसे सुनकर धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। इसीलिए कहा गया है,
भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते।
जो व्यक्ति 7 दिन तक भागवत का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके हृदय की गांठें स्वयं खुल जाती हैं, संशय मिट जाते हैं और कर्म बंधन ढीले पड़ जाते हैं।
जगति सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित।
इस संसार में सुखदेव की कथा, इस भागवत से और कुछ निर्मल है, पवित्र है, हम ये नहीं जानते। कहते हैं जैसे ही सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने बैठे, वैसे ही देवता अमृत का कलश लेकर उनके सामने आ गए और कहने लगे,
कथां सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैवं सुधामिमां। हे परम पूज्य सुखदेव जी महाराज, ये अमृत का कलश हमसे ले लीजिए और उसके बदले ये अमृत में कथा हमें दे दीजिए।
अमृत पीकर परीक्षित को मृत्यु भय नहीं रहेगा और कथा सुनकर हम कभी भी स्वर्ग से पुण्य क्षीण होने के कारण गिरेंगे ही नहीं, दोनों का कल्याण होगा।
सुखदेव जी ने परीक्षित के मुंह की ओर देखा जिस पर मृत्यु भय का कोई चिन्ह नहीं था। सोचा, ईश्वर के विधान में व्यर्थ ही व्यतिक्रम क्यों उत्पन्न करूं, जो जिसका भाग्य है उसको वैसे ही भोगने दो। सोचकर हंस पड़े और बोले, कह सुधा कह कथा लोके, कह काचा कह मणिर महान।
अरे देवताओं, कांच और मणि समान मूल्य के होते हैं क्या?
ये अमृतमयी कथा मणि यूं ही किसी के हाथ में नहीं दी जा सकती। देवता भक्त नहीं होते और अभक्तों को ये कथा दी ही नहीं जा सकती। तुलसी ने इसीलिए कहा है,
ये न कहे सठ ही हठ सी नहीं, जो मन लाई न सुनही हरली।
आज का मानव सांसारिक विषयों का दास बन गया है। वो भोग नहीं भोग रहा, भोग उसे भोग रहे हैं। भोगा न भुगता वयमेव भुगता। भोग हम नहीं भोगते, हमें भोग भोगते हैं। ये भोग सांप है जो उसको भयंकर विष से निरंतर विषाक्त करते रहते हैं। उससे बचने का एक ही उपाय है श्रीमद्भागवत का पारायण। परीक्षित इसका प्रमाण है। मृत्यु के मुख में रहने पर भी वे सहज होकर भागवत कथा सुनते रहे और निर्भय रूप से रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर गए। श्रीमद् भागवत कथा का रस न स्वर्ग में है, न सत्य धाम में है, न कैलाश में है, न वैकुंठ में है, ये केवल पृथ्वी पर ही है। अतः सज्जनों, इसका सतत पान करो, इसको कभी छोड़ो मत। ये मिल रहा है, तुम भाग्यवान हो।
स्वर्गे सत्वेन च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम् रसाः, अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुञ्चत कर्हिचित्।
सज्जनों, भगवान ने बहुत छोटी आयु दी है और उसको भी अनेक प्रकार के विघ्नों से, तापों से, शापों से, पापों से भर दिया है।
अतः जहां भी श्रीमद्भागवत की कथा का रस मिले उसका पान अवश्य करो।
सज्जनों, श्रीमद्भागवत तो परमात्मा का मूर्तिमान स्वरूप है। भगवान ने जब गोलोक जाने का संकल्प किया तो उद्धव ने उनसे पूछा, प्रभु आपके जाने के बाद ये धर्म कहां रहेगा? तब भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव मैं कहां जा रहा हूं, मेरा निवास जैसा गोकुल है वैसे ही श्रीमद् भागवत में रहेगा। मेरा और धर्म का एकमात्र आशय बनेगा श्रीमद् भागवतम। जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में एकाग्रचित होकर श्रीमद् भागवत का अमृत नहीं पिया, उसके कण का भी स्वाद नहीं लिया, उसका जीवन चांडाल गधे के समान व्यर्थ ही इधर उधर घूमने में बीता है, इसमें कोई संशय नहीं। उसने व्यर्थ ही अपनी माता को प्रसव वेदना दी।
आ जन्म मात्रम अपियेन शठेन किंचित चित्तम विधाय शुक गा था कथा न पीता चांडाल वच खरवत वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा।
सज्जनों, भक्ति ज्ञान और कर्म ये तीन उपाय बताए गए हैं परमेश्वर को पाने के। ज्ञान का पंथ तो कृपाण की धारा जैसा बड़ा कठिन है, चलना कठिन। भक्ति में सर्वस्व समर्पण करना पड़ता है और जगत को ईश्वर मानकर उसकी सेवा करना कर्म है। ये उपाय बोलने में जितने सरल लगते हैं उतने हैं नहीं, बड़े कठिन हैं। ज्ञान भक्ति और कर्म का फाट बहुत चौड़ा है, इसको पार करना बड़ा कठिन है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में अनेकों कथाओं के माध्यम से उसका विशद विवेचन किया गया है। किंतु गृहस्थी के मकड़ जाल में फंसे मानव का ये भोला मानव ना तो पूरी तरह से ज्ञान प्राप्ति के लिए तप कर सकता है, ना भक्ति के लिए पूर्ण समर्पण करने के योग्य है, और संसार के संबंधों में घिरकर सारे जीवों को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करने जैसे कर्म के भी योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रभु नाम स्मरण ही एकमात्र उपाय है जीवन नैया को पार लगाने का। श्रीमद् भागवत में सर्व पाप विनाशक भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन किया गया है। अत्र संकीर्तिता साक्षात सर्व पापो हरो हरि ही नारायणो ऋषिकेशो भगवान सात्वताम पति ही। अतः आप सभी अपने अपने मनों को स्थिर करके उन्हीं श्री हरि कीर्तन में लगा दो और गाओ। ये थी महात्म की कथा। अब प्रारंभ होता है श्रीमद्भागवतम। कथाकार ने मंगलाचरण में ही भगवान के परम सत्य रूप का ध्यान करने की बात उठाई है।
सत्यम परम धीमहि,
परम सत्य का ध्यान करते हैं। जिसको जानने में बड़े से बड़े विद्वान विमोहित तो हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत्र सूरयः, वही परम सत्य परब्रह्म अपने गोलोक में विराजमान होते हुए भी अपने संकल्प मात्र से तीनों लोकों की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं। इन भगवान को पाने के लिए कर्मकांड अनुष्ठान आदि यज्ञों से संपन्न धर्म काम में नहीं आ सकता, क्योंकि ये सभी सांसारिक फल ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं किए जाते।
इसीलिए भागवतकार ने कहा है, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम।
परम सत्य को पाने के लिए परम धर्म की आवश्यकता है। परम धर्म के वृक्ष पर जो पका हुआ अमृतमय फल है और जिसको परम मुनि सुखदेव जी ने अपने मुख से कहकर और भी अमृतमय कर दिया है, क्योंकि कहा जाता है कि तोता यदि किसी फल में अपनी चोंच मार दे तो वो बहुत मीठा हो जाता है। तो हे रसिकों, भक्तों, भावुक लोगों, इस भागवत रस का पान करके तीनों तापों, शापों और पापों से अपने आप को बचा लो। ये अमृत में फल है, इसका रस स्वादन करो।
निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादमृद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
भक्तों, जब तक शरीर में श्वास है, हृदय में गति है और इंद्रिय सजग हैं, तब तक इस अलौकिक अमृतमय कथा का पान निरंतर करो। ये स्वर्ग में प्राप्त नहीं है, पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। भक्तों, मनुष्य के चार पुरुषार्थ माने जाते हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए ये मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है। वे हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। शास्त्रों में मानव शरीर को व्यवस्थित करने के लिए कहा है, धर्मार्थ काम समसेव्य, अर्थात जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक ही अनुपात में होना चाहिए। अर्थ प्राप्ति के लिए धर्म का ज्ञान अपेक्षित है, काम पूर्ति के लिए धर्मार्थ दोनों का ज्ञान अपेक्षित है और मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्मार्थ, काम तीनों का ज्ञान अपेक्षित है। यही धर्म है। धर्म जो हमारे और हमसे परे सभी जीवों को समान रूप से धारण करता है। धर्म सापेक्षित होता है, दूसरे के साथ व्यवहार करने में धर्म की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने समान ही सारी सृष्टि को देखें और रक्षा का विचार करते हैं तो आप धर्म पर हैं। स्वार्थ की क्यारी में पाप के पौधे फलते फूलते हैं, पुण्यों के कल्प वृक्ष तो निस्वार्थ की घाटी में स्वयं उगते हैं, फूलते हैं, फलते हैं। भक्तों, संसार जमा हुआ दही है, भक्त उसे मत कर नवनीत निकालता है और उस नवनीत को मन की निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति से गूंथ कर सत्य स्वरूप गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति गढ़ता है और पूर्ण रूप से अपने आप को कृष्ण अर्पण कर देता है। उसका स्वर मीरा के स्वरों से मिलकर गाने लगता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, दधि मथ घृत काढ़ लियो छाण देव छई, तन मन धन ज्ञान कर्म परिवार समाज जगत सभी भगवान को समर्पित करना भक्ति है। खाना पीना, नहाना, वस्त्र धारण करना, आहार विहार करना भगवान ही कर सकते हैं। भगवान के बिना मैं तो शब मात्र हूँ, जो कुछ भी जीवन के व्यापार हैं भगवान के हैं, भगवान को हैं, भगवान के द्वारा हैं, अतः उन्हें समर्पित हैं। ये धर्म भागवत धर्म है, भगवान ही धारण करते हैं, मैं स्वयं उनके द्वारा धृत हूँ, धारण किया गया हूँ। जैसे वस्तु निर्माता वस्तु निर्माण के लिए यंत्र लगाता है और अपनी इच्छा अनुसार वस्तु का निर्माण करता है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है सब उसी का होता है। मिल का सारा प्रोडक्शन, उत्पादन उसके मालिक का होता है, मशीन का नहीं होता। मशीन तो उसी की इच्छा से चलती हैं, वो चाहें तो चलाएं और नहीं चाहे तो नहीं चलाए। वैसे ही प्रभु ही इस शरीर रूपी यंत्र को चला रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यं सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायजा। हमारे शरीर ब्रह्म स्वरूप कृष्ण के वाहन है। वाहन की भी क्या कोई इच्छा, स्वार्थ या अधिकार होता है? उसका केवल कर्म होता है। इसलिए भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं, कर्मण्येव वा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। तेरा अधिकार कर्म करने में लगे रहना है, फल तेरा नहीं है, फल तू मेरे लिए अर्जित करता है। भागवत में इसी समर्पण धर्म की स्थापना की गई है और इसीलिए कहा गया है, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परम। अमुक तमुक फलों की इच्छा से किए हुए कर्म धर्म भागवत धर्म मानने वालों के लिए निषिद्ध है, उनका त्याग कर देना चाहिए। और सभी कर्म भगवान के लिए, भगवान के द्वारा और भगवान के ही हैं, ऐसा मानते हुए कर्मों में समर्पण भाव से लगे रहना चाहिए। समर्पण भाव में ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों का संयोग है। ये गंगा यमुना और सरस्वती का पवित्र संगम है। सब इच्छाओं से उत्पन्न धर्मों को छोड़कर इस धर्म से जुड़ने के विषय में बड़े विस्तार से कहा गया है श्रीमद्भागवत में। श्री कृष्ण ने जीवन सार का भी सार निकालते हुए गीता के 18वें अध्याय में कहा है, हे अर्जुन, तू सभी सांसारिक धर्म को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसीलिए तू शोक मत कर। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से असंख्यों छोटे बड़े नदी नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि श्री हरि से असंख्यों अवतार हुआ करते हैं। शास्त्रों में भगवान श्री हरि परम विष्णु की दो विभूतियों का उल्लेख मिलता है। पहली विभूति नित्य विभूति है। इसमें भगवान परम विष्णु क्षीर सागर में शेषशायी के रूप में सदैव निर्लिप्त भाव से विद्यमान रहते हैं। दूसरी विभूति है लीला विभूति, जिसके अंतर्गत भगवान अवतार लेकर अनेक लीलाएं किया करते हैं। उनके अवतार लेने के तीन प्रमुख कारण पुराणों में बताए जाते हैं। एक, जीवों पर अहेतु की कृपा करना। दूसरा, संतों की रक्षा और धर्म की स्थापना करना। तीसरा कारण है भक्तों का प्रेम। तुलसीदास ने इस तथ्य को समझते हुए इस पर प्रकाश ऐसे डाला है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होत हम जाना। प्रायः भगवान के 10 अवतार जगत प्रसिद्ध हैं, किंतु श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों की कथा कही गई है। उसमें मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण के अतिरिक्त सनत, सनातन, सनक, सनंदन, नर, नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, नारद, ऋषभ, हंस, पृथु, धन्वंतरी, मोहिनी, बलराम और व्यास, इन अवतारों की लीला कथा भी है। वैसे तो सारी सृष्टि ही भगवान का अवतार है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, संसार का अणु परिमाणु भगवान के अतिरिक्त है ही क्या, कुछ नहीं है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान में सनत कुमारों के रूप में अवतार लेकर बताया कि ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके भी जगत का कल्याण किया जा सकता है। हिरण्याक्ष जब पृथ्वी को रसातल में ले जा रहा था तो भगवान ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को स्थापित किया। नारद का अवतार लेकर प्रेम भक्ति और वैराग्य के ज्ञान का उपदेश दिया। नर नारायण के रूप में कठिन तपस्या की और सारे जगत को तपोमय करके व्यवस्थित कर दिया। कपिल का अवतार लेकर सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। दत्तात्रेय का अवतार लेकर भगवान ने बताया कि सांसारिक कीचड़ में उत्पन्न होकर कमल जैसा निर्मल रहा जा सकता है, ये कोई आश्चर्य नहीं है। आकुति के गर्भ से उत्पन्न यज्ञ राजा नाभि और मेरु के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में अवतार लेकर भगवान ने परमहंसों के समान रहना सिखाया। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने पृथु का अवतार लिया और पृथ्वी को सारी संपदा से युक्त कर दिया। मनवंतर में जब सारी पृथ्वी जलमग्न होने लगी तब भगवान ने मनु और वेदों की रक्षा की ताकि सृष्टि का पुनः निर्माण हो सके। समुद्र मंथन के समय पहले कच्छप अवतार लेकर मथानी रूप मंदराचल को पीठ पर धारण किया, फिर अमृत बांटने के समय मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृत प्रदान किया ताकि सृष्टि का विकास समुचित रूप से हो सके। हिरण्यकशिपु के अत्याचारों से पीड़ित प्रह्लाद की प्रेम पुकार सुनकर नरसिंह रूप धारण किया और प्रह्लाद के द्वारा असुरों में भी प्रेम भक्ति के बीज बो दिए। अपने निरंकुश बल से न्याय और व्यवस्था तोड़ने वाले क्षत्रियों का दमन करने के लिए परशुराम अवतार लिया। सृष्टि के व्यवस्थित होने पर धर्म रूप राम के रूप में अवतार लिया और उस धर्म को गलता हुआ देखकर उसकी पुनर्प्रतिष्ठा करने के लिए कृष्ण अवतार लिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। भगवान का अंतिम अवतार पाराशर्य व्यास के रूप में हुआ, जिन्होंने वेद राशि को चार संगीताओं में बांटकर जन सुलभ बनाया। किंतु वेद तो वेद है, बिना तप के किसी की भी गति उसमें असंभव है। अतः अनपढ़ स्त्रियों अनपढ़ लोगों के लिए महाभारत की रचना की, जिसको पंचम वेद भी कहा जाता है। किंतु महर्षि का मन व्याकुल था, व्याकुलता निवारण करने का कोई उपाय उन्हें सूझ नहीं रहा था। ऐसे समय में नारद जी का आगमन हुआ। व्यास जी ने उनका विधिवत स्वागत किया और उनसे मन की व्याकुलता का कारण पूछा और उसके निवारण का उपाय पूछा। नारद जी ने तत्काल कहा,
ना यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित कर्हिचित् यद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसात् न तत्र हंसा निरमन्त्युशिक्षया।
अर्थात मुनि प्रवर, आपने वेद संहिताएं बनाई, महाभारत की सुंदर रचना की, किंतु मुनि श्रेष्ठ आपने भक्ति पूर्वक कृष्ण चरित का गायन नहीं किया। आपकी उद्विग्नता का यही कारण है। सुंदर कविता जिसमें हरि कथा नहीं है, भगवान का यशगान नहीं है, उसको कौओं के लिए फेंके हुए उच्च स्थान से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। वो मानसरोवर नहीं है जिसमें हरि भक्त रूपी हंस विहार करते हैं। कहते हैं नारद जी की बात महामुनि की समझ में आ गई और उन्होंने श्रीमद् भागवत की सुंदर रचना की। कथा वक्ता बने सुखदेव जी महाराज, व्यास जी के मानस पुत्र, और श्रोता बने परीक्षित जी। कौरव और पांडवों के विशाल कुटुंब से बचा एक अदद व्यक्ति। शेष महाभारत की युद्ध यज्ञ में आहुति जैसे बन गए। कलयुग आ गया था, जिसके परिणाम से भगवान कृष्ण की अनुकंपा से जीवित परीक्षित भी बच नहीं सके। शिकार खेलने गए, थक गए, प्यास से व्याकुल होकर एक ऋषि की कुटी पर जा पहुंचे। ऋषि ध्यान में थे, शरीर से परे अध्यात्म लोक में। राजा ने जल मांगा, ऋषि स्थिर रहे। राजा को ऋषि मर्यादा के विपरीत क्रोध आ गया। सामने मरा सांप पड़ा दिखाई दिया, वही धनुष की प्रत्यंचा से उठाकर ऋषि के गले में डालकर राजभवन लौट आए। ऋषि पुत्र ने अपने ऋषि पिता के गले में मरा सांप देखा तो क्रोधाग्नि में भर गए और शाप दिया, इति लंघिता मर्यादम तक्षता सप्तमे अहनी दंक्षति स्म कुलांगारम चोदिता मे तद्रुहम। जिस कुलांगार ने मेरे पिता का ऐसा अपमान करके धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है उसको सातवें दिन यही सर्प तक्षत बनकर डस लेगा। राजा परीक्षित को ऋषि पुत्र द्वारा दिए गए शाप की सूचना मिली। परीक्षित मुंह छोड़कर गंगा के पवित्र तट पर आकर बैठ गए। उन्होंने भोजन भी त्याग दिया।
श्री कृष्ण चरणों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर उन्हीं के चरणों का ध्यान करने लगे, क्योंकि ना यतो वन्या शिवा पंथा विशता संसृता विहि वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। संसार के चक्र जाल में फंसे मनुष्य के लिए जिस प्रकार भी श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो सके वो उपाय प्राप्त करे, क्योंकि उसके अतिरिक्त कल्याण पाने का कोई मार्ग नहीं है। परीक्षित जी के सत्कर्म जग गए थे कि उसी समय व्यास जी के मानस पुत्र सुखदेव जी का आगमन हुआ।
सा विष्णुरातो थिथया आगताय तस्मै सपर्या शिरसा जहर।
राजा परीक्षित ने परमेश्वर के ध्यान में अनुरक्त अतिथि सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी विधिवत पूजा की। हाथ जोड़कर पूछा,
पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा।
हे मुनीश्वर, जो पुरुष मृत्यु के मुख में पड़ा हुआ है उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने परीक्षित जी के कृष्णानुराग को भांप लिया और हंसते हुए कहने लगे,
भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरि तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम।
हे राजा परीक्षित, सभी प्राणियों में आत्मस्वरूप श्री हरि ही परिलक्षित हो रहे हैं, अतः उनका श्रवण, उनका हरि कीर्तन, उनका स्मरण अभय पद प्रदान करने वाला है, अतः उन्हीं का ध्यान करो।
बिल्बतोरु क्रम विक्रमान्ये नाश्रणवता कर्ण पुटे नरस्य जिव्यासति दर्दुरिकेव सूत ना चोप गायत उर्गाय गाथा।
जिनके कान कृष्ण कथा नहीं सुनते वे सांप के बिल हैं। जिस जीव पर कृष्ण नाम नहीं है वो जीव मेंढक की जीव केवल टर टर करने के लिए है। जो नेत्र कृष्ण की अनुपम झांकी के प्यासे नहीं है वे निर्जीव मोर के पंख के अतिरिक्त और हैं क्या। बिंदु जी ने इसी भाव को बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है।
है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो हरिचरण में बंदन किया करे, बेकार वो मुख जो की रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे, हीरे मोती से होती नहीं है शोभाथ की, है हाथ वो जो नाथ की पूजा किया करे, है हाथ वो जो नाथ की पूजा किया करे, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु चरण में अर्पण सदा जीवन किया करे, प्रभु चरण में अर्पण सदा, प्रभु चरण में अर्पण सदा जीवन किया करे, है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। बोलो कृष्ण चंद्र महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।